का था, रूह वही, रूप नया।
कहानी कुएं का राज के पहले भाग में आपने सुना कि नवाब रशीदुज़्ज़मा की कोठी के कुएं से चिंगारियों की बौछार हो रही थी। कोठी के अंदर से तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही थीं। यहां तक कि पुलिस ने भी इसे किसी प्रेत या भूत का साया बतलाया। क्या वाकई ये एक भूत का साया है या इसके पीछे किसी और तरह की साजिश है? सुनिए भाग दो में। उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोज नई वारदातें होने लगीं। लगभग हर रात को कुएं से चिंगारियां निकला करती थीं और जानवरों की भयानक आवाजों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज की हालत उस वक्त देखते ही बनती थी। जैसे ही जानवरों की आवाजें सुनाई देती, वो उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वो भी उन चीखने वाले जानवरों में से एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज पर भी किसी बहुत बड़े जिन्न का साया है। कभी कभी तो वो यहां तक कह देता कि खुद परवेज ही उन सारी मुसीबतों की जड़ है, लेकिन नवाब साहब उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। हालांकि परवेज उनका सौतेला भाई था, लेकिन वो उसे बहुत मानते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि एक पागल आदमी की जरूरत का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वो जिस तरह चाहे जिंदगी बसर करे। उसके लिए 3 पहलवान नौकर रखे गए थे जो उसे गोद में उठाए फिरते थे। वो शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 8 साल पहले उसकी ये हालत हो गई थी। एक बार वो छत से गिर पड़ा, सिर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छा हो जाने पर भी दिमागी संतुलन बरकरार न रह सका। अच्छे हो जाने के बाद काफी दिनों तक कुछ बोला ही नहीं, बस कभी कभी बच्चे की तरह सिर्फ गूंगां कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसी तरह वो भी फिर से बोलना सीख रहा था। अब लगभग 8 साल गुजर जाने के बाद वो इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीदुज़्ज़मा ने उसके इलाज में कोई कसर ना उठा रखी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक ना हुई। पहले हादसे के बाद से ही दिन भर परवेज रात की बातें रचता रहता। वो हर एक शख्स का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उन हादसों को दोहराता। दूसरी रात जब उसने कुएं से चिंगारियां निकलती देखी, उस वक्त उसकी हालत वही हुई जो किसी बच्चे की आतिशबाजी देखकर हुआ करती है। और फिर तो वो उन तमाशों के इंतजार में काफी रात गए तक जागता रहता था। उसके बारे में एक खास बात और थी, और वो ये कि वो तारिक और उसके नेवले से बुरी तरह नाराज रहता था। तारिक के सामने आते ही एकदम उसी तरह दम साध लेता था जैसे कोई नटखट बच्चा बहुत ही गुस्से वाले बूढ़े के सामने भीगी बिल्ली बन जाया करता है। उसके इस रवैये को बहुत ही ताज्जुब की नजर से देखा जाता था। सिर्फ इसी बात पर घर के बहुत से नौकरों का ख्याल था कि तारिक ही इन मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनके अपने ख्याल के मुताबिक पागल और दूध पीते बच्चों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और ये खुली हुई हकीकत थी कि उन हादसों का होना उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से तारिक ने कोठी में कदम रखा था। वे तारिक को बहुत ही खराब किस्म का जादूगर समझने लगे थे जिसके कब्जे में खराब रूहें थीं। वे सब के सब तारिक से बुरी तरह नाराज थे और उससे नफरत करने लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी नफरत का इजहार नहीं कर पाता था, क्योंकि वो नवाब साहब का खास मेहमान था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक शब्द भी मुंह से निकालता। कोठी में होने वाले वाकयात के बारे में आसपास में काफी दूर तक बातें फैल गई थीं, और नवाब साहब का मेहमान भी लोगों के खास चर्चे में आ गया था। बहुत सारे लोगों ने नवाब साहब को राय दी कि वे फिलहाल कोठी छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी मजबूरी की वजह से दूसरे लोग भी अभी तक जमे हुए थे, लेकिन दूसरों का समझाना ज्यादा दिनों तक कायम न रह सका। हुआ ये कि अचानक एक दिन अस्तबल में नवाब साहब का कीमती घोड़ा मुर्दा पाया गया, दूसरे दिन एक अच्छी नस्ल का कुत्ता, तीसरे दिन एक गाय मर गई, और फिर तो इसका सिलसिला ही शुरू हो गया। लगभग रोज किसी न किसी पालतू जानवर की लाश मिलती। इन हादसों के बाद कई नौकर चुपचाप वहां से खिसक गए। उन्हें शायद ये डर था कि कहीं जानवरों के बाद आदमियों का नंबर ना आ जाए। हालांकि नवाब साहब अब तक यकीन नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन्हें भी करीब करीब यकीन हो गया था कि यह जरूर कोई रूहानी मामला है। कुएं के अंदर पाए जाने वाली लाशों के बारे में उन्होंने बाद में यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि शायद ये नजर का धोखा हो, लेकिन जानवरों की लगातार मौतें किसी तरह नजरअंदाज ना की जा सकी। उसी दौरान बहुत से मौलवियों और साधु महात्माओं की खिदमत ली गई कि वे किसी तरह कोठी पर कब्जा कर लेने वाली खराब रूहों को भगाएं, लेकिन उनमें कोई कामयाब ना हो सका। तारिक अभी तक उनका मेहमान था। उसकी रहस्य भरी शख्सियत के बिना पर नवाब साहब को भी उस पर कुछ कुछ शक होने लगा था, लेकिन वे उससे कुछ कह ना सकते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह यहां से चला जाए जब तक कि नवाब साहब इन मुसीबतों से छुटकारा न हासिल कर लें। नवाब साहब ने दो एक बार दबी जबान में ये कहा भी था कि सिर्फ उनकी वजह से वो तकलीफ ना उठाए, लेकिन तारिक पर इसका कोई असर ना हुआ। शुरू में गजाला का भी यही ख्याल था कि यह कोई रूहानी मामला है, लेकिन मौलवियों और साधुओं के थक हार जाने के बाद उसे यकीन हो गया कि एक इंसानी साजिश के अलावा ये और कुछ नहीं। उसने नवाब साहब से भी इसका जिक्र किया और बहुत देर तक अपने अंदाजे पर बहस करती रही, लेकिन नवाब साहब ने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी।
आखिर ये चीजें इंसानी साजिश का नतीजा कैसे हो सकती हैं?
अरे ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं जिन्हें बेकार समझा गया, लेकिन बाद को उनमें कोई इंसानी हाथ ही नजर आया।
वे वाकयात और होंगे, भला कोई इंसान दरो दीवार से जानवरों की आवाजें किस तरह पैदा कर सकता है?
फिलहाल तो मैं इसका ठीक ठीक कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें किसी इंसान का हाथ है।
क्या तुम्हारा इशारा तारिक की तरफ है?
नवाब साहब बोले, मेरा इशारा उसकी तरफ नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि वो ही इन सारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार हो? हमें तो ये तक नहीं मालूम कि वो रहने वाला कहाँ का है, उसकी कमाई धमाई क्या है, और आप ये भी जानते हैं कि वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। मैंने उसकी हिप्नोटिज्म वाली बात आपसे बताई थी ना।
किसी के बारे में बेकार ख्याल रखना ठीक नहीं है।
आप बेकार की बातें कह रहे हैं, मुझे 100% यकीन है। नवाब साहब खामोश हो गए। मैं सोच रही हूं क्यों ना इस मामले में फरीदी साहब की मदद ली जाए। नवाब साहब के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई, लेकिन फिर फौरन ही उस पर ना उम्मीदी की धूल की तहें चढ़ गईं।
भला फरीदी इस मामले में क्या कर सकेगा? बिला वजह उसे बुलाने का क्या फायदा?
अरे अगर वो कुछ नहीं भी कर सके तो कम से कम कोई अच्छी राय तो दे सकेंगे।
मगर वो आएंगे ही क्यों?
आएंगे क्यों नहीं, मैंने सुना है कि आजकल वे और उनका असिस्टेंट 3 महीने की छुट्टी पर हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे।
खैर कोशिश करो, अगर आ जाएं तो अच्छा ही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस मामले में उनसे कोई मदद ना ली जाए।
खैर अगर कुछ ना हो सका तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि अगर इसमें किसी आदमी का हाथ है तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी हरकतें ही छोड़ दे।
आदमी का हाथ? अरे भला कोई आदमी दीवारों से जानवरों की आवाजें कैसे निकाल सकता है गजाला? और फिर ये कि आए दिन जानवरों की मौत, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है?
कुछ भी हो, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि फरीदी साहब इस मामले पर कुछ ना कुछ रोशनी जरूर डालेंगे। नवाब साहब खामोश हो गए। अंधेरी रात अपने काले पंख फैलाए धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ तैर रही थी। लगभग 2 बज गए थे। आज भी पहले की तरह कुएं से चिंगारियां निकली थीं और जानवरों की आवाजें भी सुनाई दी थीं। लेकिन कोठी के लोग कुछ इस तरह इन चीजों के आदि हो गए थे जैसे ये उनके लिए कोई अनोखी बात ही ना हो। वैसे उनके दिलों में एक खटका जरूर लगा हुआ था कि देखें सुबह किसी जानवर की लाश से वास्ता पड़ता है या आदमी की। नवाब साहब गजाला के कमरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। गजाला ने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। आखिर वो थक हार कर खिड़की के करीब आकर बैठ गई। उसके कमरे में नीले रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे की खामोश फिजा में नीले रंग की बोझिल रोशनी कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी। गजाला जिस खिड़की के करीब बैठी थी उसका रुख बाग की तरफ था। वो बैठे बैठे अचानक चौंक पड़ी। एक अंधेरा साया धीरे धीरे कुएं की तरफ रेंग रहा था। गजाला का दिल धड़कने लगा। उसका दिल चाहा कि वो शोर मचाकर घर वालों को जगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। वो इंसानी साया कुएं के करीब जाकर रुक गया। उसने अपने कंधे से कोई चीज उतारी और कुएं की जगत के नजदीक जा पहुंचा। फिर वो पास में करीब उगे हुए पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने कोई चीज कुएं में फेंकी और अब वो कुएं में सिर लटकाए कुछ देख रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में वो कुछ और देखने लगा। गजाला के मुंह से चीख निकल ही जाती लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। टॉर्च की रोशनी में उसे उस संदिग्ध आदमी के चेहरे पे हल्की सी झलक दिखाई पड़ रही थी। ये तारिक के अलावा और कोई नहीं था। वो शायद पेड़ की टहनियों से रस्सी बांधकर उसी के सहारे कुएं में उतरने जा रहा था। गजाला बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज बैठ गई हो और वो कभी बोल नहीं सकेगी। तारिक कुएं में उतर गया। गजाला को लग रहा था जैसे उस पर धीरे धीरे झटका लग रहा हो। उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद आ गईं और उस वक्त वो कितनी भयानक हो गई थीं जब वो उसे हिप्नोटिज्म से सुलाने की कोशिश कर रहा था। गजाला की आंखें बोझिल होने लगी। एक अजीब तरह की सनसनाहट उसे अपने सारे जिस्म में दौड़ती लग रही थी। जिस्म में हिलने की ताकत तक नहीं रह गई थी। वो वहीं कुर्सी से टेक लगाकर गहरी नींद में सो गई। न जाने वो कब तक उसी हाल में सोती रही। अचानक शोर की आवाज सुनकर वो जाग उठी। सुबह हो गई थी लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। पूरब में लाली छा गई थी। शोर की आवाज बाग की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा। कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गजाला झपट कर बाहर निकली। अभी वो कुछ ही कदम गई होगी कि उसने देखा कि दो नौकर परवेज को उठाए हुए कोठी की तरफ ला रहे थे। उनके पीछे नवाब साहब और तारिक थे। क्या हुआ? गजाला एकदम से बोल उठी। न जाने कब से कुएं के करीब बेहोश पड़ा था, नवाब साहब घबराहट में बोले। अचानक गजाला को रात की बातें याद आ गईं। उसने तारिक की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि तारिक ने अपनी झुकी हुई नजरें ऊपर उठाईं। गजाला कांप गई। तारिक से आंखें मिलते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़ ली हो। उसके सारे जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई थी। उसकी बदलती हुई हालत का एहसास करीब करीब सबको हो गया था। घबराओ नहीं, अभी होश आ जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं, तारिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अचानक उसके जिस्म की थरथराहट हट गई और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो पत्थर के बुत की तरह हो। हालांकि उसे अपने दिल की धड़कन पर भी शक होने लगा था कि कहीं अचानक बंद तो नहीं हो गई। वो कंधा जिस पर तारिक ने हाथ रखा था बिल्कुल सुन्न हो गया था। तारिक के कंधे पर उसका अजीबोगरीब नेवला बैठा अखरोट को तर रहा था। परवेज को सोफे पर लिटा दिया गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो होश में जरूर आ गया था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। फौरन ही एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसने ये दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ देर में वो बोलने के काबिल हो जाएगा। परवेज मियां, तुम कुएं के पास क्यों गए थे?
तितली पकड़ने।
या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर, नवाब साहब रुआंसे हो गए।
मंगा दीजिए ना भाईजान, मिली तितली,
परवेज बच्चों की तरह ठनक कर बोला। हाँ हाँ मंगा देंगे, तुम चुपचाप लेट जाओ, तारिक मुस्कुरा कर बोला। तारिक की आवाज सुनकर गजाला ने नफरत से होंठ से कोड़ लिए लेकिन उसकी आंखों से नफरत के बजाय खौफ झांक रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वो रात का वाकया बयान कर दे लेकिन हिम्मत ना पड़ी। मालूम नहीं कि वो कौन सी ताकत थी जो हर बार उसकी जबान रोक लेती थी। अभी तक सब परवेज के सोफे के पास खड़े थे।
मेरी दूध की चीची,
परवेज अचानक उठते हुए बोला।
अभी मंगवाए देता हूँ,
नवाब साहब बोले। परवेज की दूध पीने की शीशी कुएं की जगत के करीब टूटी हुई पड़ी थी। परवेज, तुम किस वक्त वहां गए थे? तारिक ने परवेज से पूछा।
जब काली बिल्ली पर ऊंट बैठा पानी पी रहा था, परवेज ने जवाब दिया।
मालूम होता है रात इन्हें किसी खबीस ने घेर लिया था, तारिक कुछ सोचते हुए बोला।
ए गजाला, हटो यहां से, नहीं तो ये तुमको माल डालेगा,
परवेज ने अपनी आंखें बंद करते हुए गजाला से कहा। गजाला के रहे सहे शक भी परवेज के इस जुमले पर साफ हो गए और उसे यकीन हो गया कि इन शैतानी हरकतों में तारिक का हाथ है। जिस तरह वो अनजाने में उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकती, इसी तरह शायद परवेज भी डरता है। उसी दिन शाम को गजाला कुछ ऐसे इंतजाम में लग गई जैसे उसे सफर करना है। नवाब साहब के पूछने पर उसने बताया कि वो अपने मामू के यहाँ शहर जा रही है। नवाब साहब ने इत्मीनान की सांस ली। वो पहले से ही ये चाहते थे कि वो कुछ दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, लेकिन वो किसी भी तरह तैयार न थी। गजाला शाम के 7 बजे की गाड़ी से शहर के लिए रवाना हो गई। गजाला स्टेशन से टैक्सी करके फरीदी के घर पहुंची। फरीदी घर पर मौजूद नहीं थे। सार्जेंट हमीद रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। गजाला को देखकर उसने रेडियो बंद कर दिया और घबराहट में उससे बैठने को भी नहीं कहा। आखिर वो खुद ही एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। क्या फरीदी साहब यहाँ नहीं है? गजाला ने पूछा।
कहीं गए हैं।
शहर से बाहर?
जी नहीं।
कब तक लौटेंगे?
ये बताना जरा मुश्किल है।
खैर, मैं उनका इंतजार करूंगी।
उसके बाद खामोशी छा गई।
आपने रेडियो क्यों बंद कर दिया?
गजाला मुस्कुराकर बोली।
आपको पुराने गानों में बड़ी दिलचस्पी मालूम होती है।
हाँ, यूं ही कुछ, बस ऐसे ही, हमीद ने दोबारा रेडियो की सुई घुमाते हुए कहा।
क्या फरीदी साहब आजकल छुट्टी पर हैं?
जी हाँ।
और आप भी?
जी।
फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद हमीद उठा। तो आप भी कहीं जा रहे हैं?
जरा चाय के लिए कह दूं?
ओह, तकलीफ ना कीजिए।
तकलीफ की कोई बात नहीं।
हमीद के चले जाने के बाद गजाला ने मेज पर रखी हुई किताबें उलटनी पलटनी शुरू कर दी। वो इस वक्त फरीदी की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यहाँ चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां लगी हुई थी। लाइब्रेरी का कमरा फरीदी के अजायब घर के कमरे से मिला हुआ था। दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। गजाला जिस मेज पर किताबें देख रही थी, वो उसी दीवार से मिली हुई थी। जैसे ही उसने रैक में लगी हुई किताबों में से एक किताब उठाई, उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया और साथ ही सांप के फुफकारने की आवाजें आईं। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी। आवाज फिर सुनाई दी। अब उसे समझ में आ गया कि ये आवाज दूसरे कमरे से इस छेद के जरिए आ रही है। उसने किताबें हटाकर अपनी आंख छेद से लगा दी। दूसरे कमरे में एक बहुत ही ज्यादा पावर वाला बल्ब जल रहा था। फुफकार की आवाज फिर सुनाई दी और गजाला चीख मारकर पीछे हट गई। एक बड़ा सा सांप जमीन पर बिछे हुए कालीन पर रेंग रहा था।
हामी साहब, हामी साहब,
वो जोर से चीखने लगी। क्या क्या बात है? हमीद कमरे में दौड़ता हुआ आया।
वो कमरे में सांप? नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ, आप खुद देख लीजिए।
अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं?
गजाला उसे हैरत से देखने लगी।
वहां एक नहीं, सैकड़ों हैं।
जी जी,
गजाला की हैरत बढ़ गई।
जी हाँ, वो फरीदी साहब का अजायब घर है। इत्तेफाक से चाबी उनके पास है, वरना मैं आपको वहां की सैर करवाता।
उन्होंने सांप भी पाल रखे हैं?
जी हाँ, सैकड़ों की तादाद में।
गजाला खामोश हो गई। फरीदी की शख्सियत उसे तारिक से भी अजीब मालूम होने लगी। वो अपने कंधे पर नेवला उठाए फिरता है और ये तो सांप पालता है।
फरीदी साहब 9:30 तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने सांपों को दूध जो पिलाना होता है।
दूध कौन पिलाता है उन्हें?
गजाला ने पूछा। खुद फरीदी साहब। गजाला उसे फटी फटी नजरों से देख रही थी। आइए दूसरे कमरे में चलकर बैठें। जैसे जैसे उनके खाने का वक्त करीब आता जाएगा, उनकी धमा चौकड़ी और बढ़ जाएगी। अमीद ने दीवार के छेद को किताबों से ढकते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी से उठकर ड्राइंग रूम में चले आए। थोड़ी देर बाद चाय आ गई।
अरे आपने बेकार तकलीफ की,
गजाला बोली। तकलीफ? हमीद मुस्कुरा कर बोला। आप भी कमाल करती हैं। उसने चाय बनाकर गजाला की तरफ बढ़ा दी। बरामदे में कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद ने पलट कर देखा तो उसकी माशूका शहनाज दरवाजे पर खड़ी गजाला को घूर रही थी। हमीद बौखला कर खड़ा हो गया। अरे आओ आओ आओ। शहनाज आकर बैठ गई।
चाय?
हमीद ने उसकी तरफ प्याली बढ़ाते हुए कहा।
नहीं मैं पीकर आई हूँ,
शहनाज ने सूखी सी आवाज में कहा। आपसे मिलिए, आप हैं गजाला खानम, ये हैं शहनाज बानो। शहनाज और गजाला ने हाथ मिलाते हुए 2-4 रस्मी जुमले दोहराए और फिर खामोशी से एक दूसरे को देखने लगी। अरे भाई चाय तो हर वक्त पी जा सकती है, हमीद ने शहनाज से कहा। जरूरी नहीं है कि मैं आपके हर उसूल पर अमल करूं, शहनाज ने ऐसे अंदाज में कहा कि हमीद झेंप गया। अब उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने महसूस कर लिया था कि अगर शहनाज गजाला को देखकर शक कर रही है तो ऐसी सूरत में उसे छेड़ना यकीनन खतरनाक बात थी।
आप फरीदी साहब से मिलने आई हैं,
हमीद ने कहा। हमीद के इस बेकार जुमले पर गजाला समझ गई कि हमीद शहनाज को इत्मीनान दिलाना चाहता है, इसलिए वो खुद भी फरीदी के बारे में बातें करने लगी।
मालूम नहीं फरीदी साहब कब आएंगे, उनसे मेरा मिलना बेहद जरूरी है,
शहनाज उसे शक की नजरों से देखने लगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और फरीदी सीटी बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ।
अरे गजाला खानम,
खैरियत? फरीदी ने दरवाजे पर रुक कर कहा। सब लोग खड़े हो गए।
कब आई?
फरीदी ने गजाला से हाथ मिलाते हुए कहा।
लगभग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, स्टेशन से उतरकर सीधी इधर ही आई हूँ।
और हमीद साहब आपको सिर्फ चाय पर टाल रहे हैं? बैठिए बैठिए। फिर हमीद की तरफ मुड़कर बोला, अरे भाई खाने के लिए तो कहो।
नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है।
अरे रिश्तेदार तो मैं भी हूँ, क्या नवाब साहब ने आपको नहीं बताया? फरीदी ने कहा।
बताया था लेकिन
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, फरीदी ने हमीद की तरफ देखकर कहा।
हमीद खैर खा लूंगी, लेकिन पहले वो काम होना चाहिए जिसके लिए मैं आई हूँ।
क्या बात है, कोई खास परेशानी?
जी हाँ,
बयान कीजिए।
हाँ अभी पर आप जरा थके हुए लग रहे हैं, आप जरा आराम कर लीजिए।
फरीदी समझ गया कि शहनाज की मौजूदगी में वो कुछ हिचकिचा रही है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं, फरीदी ने उठते हुए कहा। गजाला भी खड़ी हो गई। अरे उन्हें वो अजायब घर जरूर दिखाइएगा, अभी आपकी लाइब्रेरी से एक सांप देखकर डर गई थी। अच्छा खैर आइए। दोनों ड्राइंग रूम में चले गए।
तुम कुछ नाराज मालूम होती हो,
हमीद ने शहनाज से कहा।
नहीं तो
फिर चाय क्यों नहीं पी?
अरे वाह ये अच्छी रही।
यकीनन चाय अच्छी है, तुम पीकर तो देखो। छोड़िए आप तो बेकार के जुमलों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, शहनाज ने तंग आकर कहा।
लेकिन आज तक किसी जुमले ने मुझे इसकी शिकायत नहीं की।
बस चल पड़ा ना आपका चरखा, शहनाज मुंह बनाकर बोली। हमीद हंसने लगा।
अच्छा ये बताइए कि आप वादा करने के बावजूद क्यों नहीं आए,
शहनाज ने कहा। अरे अब ये सब तुम फरीदी से पूछो, उनके चक्कर में पड़ने के बाद उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है।
आजकल कौन सा चक्कर, वो तो छुट्टी पर है ना।
जिस पर हर वक्त काम करने का भूत सवार रहता हो ना, उसके लिए कैसी छुट्टी। गजाला का इस वक्त आना अब मुझे परेशान कर रहा है।
क्यों?
अब कोई गैर मामूली बात जान पड़ती है।
तो आपको किस बात की परेशानी,
परेशानी यूं है कि कहीं ये छुट्टियों का जमाना यूं ही ना बर्बाद हो जाए। अगर वो किसी मामले में फरीदी साहब से मदद लेने आई है तो फिर छुट्टियों का अल्लाह ही मालिक है। ये गजाला कौन है? दाराब नगर के जागीरदार नवाब रशीदुज्जमा की लड़की। फिर खामोशी छा गई। दरअसल मैं ये कहने आई हूं कि परसों मेरा बर्थडे है।
हमीद कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर ने खाने की खबर की।
इंस्पेक्टर साहब और मेहमान खाने की मेज पर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आदाब।
अच्छा तो फिर मैं चली, शहनाज ने उठते हुए कहा। वाह, चाय नहीं पी तो खाना भी नहीं खाओगी, हमीद ने कहा और फिर दोनों खाने के लिए जा पहुंचे।
क्या गजाला इंस्पेक्टर फरीदी को अपने साथ दाराब नगर ले जा सकी? क्या इंस्पेक्टर फरीदी ने वहां पहुंचकर कुएं का राज पता कर पाया? ये जानने के लिए सुनिए भाग 3 सिर्फ गाथा पर।